तुलसी के काव्योत्कर्ष का प्रधान कारण पात्रों की मन स्थिति का ज्ञान और पूरी परिस्थिति के औचित्य निर्देशित मार्ग पर चलना है। यही औचित्य निर्देशित मार्ग वह छाया है जिसकी चर्चा तुलसी ने की है। के ही छाया कवि मति अनुसरई, छाया परिस्थितियों घटनाओं पर आश्रित है। छाया वह सृष्टि है जो कवि के चित्त में उदित भाव मूर्ति के समानांतर शब्दार्थ द्वारा प्रकाशित होती है। वह विमल विधु की है जिसके सौंदर्य को देखकर कवि मुग्ध मूक हो जाता है, किंतु वह रचना नहीं है। रचना उस छाया, उस भाव सृष्टि, उस कल्पना की प्रकट शब्द सर्जना है। कल्पना और सर्जना में गहरा संबंध है, लेकिन जैसी कल्पना है वैसी ही शब्द सर्जना नहीं होती। उसमें कई अन्य उपकरण बाधक और साधक होते हैं। शब्द, उनके सामान्य अर्थ, उनकी शक्तियाँ, अलंकार, शब्दों की ध्वनियाँ, छंद, यदि आदि, इन सबका प्रयोग करते समय कवि को असीधार पर चलना पड़ता है। ये सभी तत्व परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते चलते हैं। दृश्यमान जगत जटिल विधान को व्यक्त करने वाली शब्द सर्जना की प्रक्रिया भी कम जटिल नहीं होती। जो तत्व सर्जना में सहायक होते हैं वे ही बाधक भी होते हैं। कोई एक तत्व अभिव्यक्ति के लिए पूर्ण सहायक नहीं होता, सहायक होता है औचित्य, काव्य विवेक, जिसका संबल लोक मंगल की दृष्टि है। यह औचित्य दो काम करता है। एक तो तुलसी की अपने देशकाल और विविधतापूर्ण मानव स्वभाव के संदर्भ में राम कथा को चित्रित करने की क्षमता प्रदान करता है। राम कथा को युगीन भाव बोध में रूपांतरित करता है। दूसरे, उस भाव बोध को संयमित करता है। औचित्य सृजनात्मकता से जुड़कर रचना के विभिन्न तत्वों या उपकरणों की क्षमता अक्षमता का एहसास भी कवि को कराता रहता है। ऐसा न हो तो रचना कथ्य या वर्ण की को विविध चेष्टाओं द्वारा ज्यों का त्यों शब्द रूपायित करने में आद्यंत सतर्क न बनी रह पाए। तुलसीदास की कविता अपने वर्ण को जिस प्रकार साक्षात देखती है उसी प्रकार यानी उसी प्रत्यक्षता और जीवंतता के साथ चित्रित करना चाहती है। भाषा मार्मिक चित्रण की प्रक्रिया से रचना करती है। चित्रण के जरिए वह श्रव्य को निरंतर दृश्य में रूपांतरित करते रहती है। इसीलिए महान कविता में नाटकीयता विद्यमान होती है। यह नाटकीयता कवि कौशल की कसौटी है। नाटकीयता कविता में सक्रिय चित्रात्मकता का ही दूसरा नाम है। नाटकीयता केवल कथानक विन्यास में नहीं, संवाद, वाक्य गठन, शब्दों की ध्वनि योजना, छंदों की यति रचना के प्रत्येक उपकरण में रची बसी होती है। यहाँ एक बात और ध्यातव्य है। नाटकीयता से काव्य दृश्य होता है, किंतु प्रदर्शन, भाषा स्फीति और नाटकीयता एक साथ नहीं चल सकते। अनुभूति की तीव्रता जैसे सघन बनकर उपमा, प्रतीप, बिंब बनते हैं, उसी प्रकार अनुभूति की धार पर कटकर विवरणात्मकता से नाटकीयता में पर्यवसित हो जाती है। भाषा गोया यह मुद्रा धारण कर लेती है। कहने से क्या फायदा, खुद देख लीजिए। कहने से क्या फायदा यानी कहना बेसुध है, कथन अशक्त है। कही न सकती गुण रुचि अधिकाई, लक्ष्मण परशुराम केकई मंथरा दशरथ केकई के संवादों में नाटकीयता का तत्व किस प्रकार मिलता है, इसकी थोड़ी बहुत चर्चा हो चुकी है। लेकिन यहाँ तात्पर्य केवल नाटकीय संवादों से नहीं है। नाटकीयता से तात्पर्य समूचे वर्णन प्रकार से है। वर्णन प्रकार की नाटकीयता का उचित उदाहरण राम भरत के मिलन में है। यह दिखाया जा चुका है कि किस प्रकार राम भरत प्रणाम करत रघुनाथा सुनते ही प्रेम अधीर हो उठे। प्रेम अधीरता चित्रित हुई कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा, और बरबस लिए उठाए उर लाए कृपा निधान से। बरबस से भरत के राम के चरणों पर गिरने के प्रयास की व्यंजना हुई। शब्दों का प्रयोग न करके शब्दों की शक्ति को बढ़ा दिया गया। पट, निशंग, धनु, तीर अस्त व्यस्त, शब्द अस्त व्यस्त। इसी अस्त व्यस्तता में झलकता हुआ राम और भरत के प्रेम का शब्दबद्ध सौंदर्य। नाटकीयता से तात्पर्य ऐसे सक्षम वर्णन प्रकार से है। नाटकीयता का तत्व इस बात पर बल देता है कि जो वर्ण है उसे रूप में प्रकट कर दिया जाए, अतः इसमें स्वाभाविकता और विशिष्टता अनिवार्य है। जो जैसा है उसे वैसा दिखाने में स्वाभाविकता का बना रहना आवश्यक है। विशिष्टता से तात्पर्य यह कि जो चित्र दिखाया जाएगा वह कोई विशिष्ट चित्र ही होगा। चित्र जब उभरता है विशिष्ट ही, हाँ वह ऐसा होता है कि अधिकांश देखने वालों के लिए भी विशिष्ट चित्र बन जाता है। इस विशिष्ट चित्र को उभारने के लिए रचनाकार को दृश्य की स्थिति और पात्रों की चेष्टाओं को दिखाना पड़ता है। हवा चल रही है, पेड़ पौधे झूम रहे हैं, बादल छाए हुए हैं, ऐसे वर्णन दृश्य की विशिष्टता ही उपस्थित करते हैं। ये वर्णन रंगमंच की सज्जा का काम करते हैं। पात्रों की चेष्टाएं अभिनय है, अभिनय पात्रों की मनस्थिति की विशिष्टता व्यंजित करता है। काव्य में नाटकीयता का समावेश दृश्यों की स्थिति और पात्रों की चेष्टाओं से होता है। बाह्य और आंतरिक स्थिति का ऐसा चित्रण हो कि पढ़ने सुनने वालों द्वारा अपनाई जा सके। पात्रों की चेष्टाओं को दिखा देने से रचनाकार भाव को व्यंजित कर देता है, उसे भाव को कहना नहीं पड़ता। भाव को व्यंजित न किया जा सके, कहना पड़े तो काव्य उतना मार्मिक नहीं होगा। वह स्वशब्दवाच्यत्व दोष से ग्रस्त हो जाएगा। इसीलिए किसी भी विधा के सबसे अधिक मार्मिक स्थल प्रायः वही होते हैं जहां रचना में नाटकीय तत्व उभर सके। गोदान का प्रारंभ जहां होरी और धनिया बात करते हैं, धनिया होरी के पांचों पोशाक पहनकर चलने पर मजाक करती है, होरी मर्द के साठे पर पाठे होने की बात करता है, ज्यों का त्यों किसी नाटक का संवाद है। होरी के यह कहने पर साठ तक पहुंचने की नौबत ही नहीं आएगी धनिया। धनिया के चेहरे का क्षणिक उल्लास किस तरह मुरझा जाता है, यह धनिया की भूमिका में उतरने वाली अभिनेत्री को अपने अभिनय से दिखाना पड़ेगा। यही राम की शक्ति पूजा की नाटकीयता को भी याद कर लीजिए। रामचरितमानस का उपयोग प्रतिवर्ष लाखों स्थानों पर रामलीला में होता है। रामचरितमानस को पढ़ने पर यह ध्यान बराबर आता रहता है कि तुलसी ने इसकी रचना रामलीला को ध्यान में रखकर तो नहीं की थी। उनके राम आखिर इस धरती पर नाटक लीला ही तो कर रहे थे। अस्तु चित्रण यानी बाह्य और आंतरिक स्थिति को पाठकों के सामने खड़ा कर देने की विधि यह है कि रचनाकार संयमित शब्दावली में देश काल और परिस्थिति के अनुसार स्वाभाविक और विशिष्ट चेष्टाएं प्रकट कर दे। पुष्प वाटिका में राम पर अनुरक्त सीता का यह चित्र देखिए। बाह्य चेष्टा का वर्णन, चित्तवति चकित चहु दिसि सीता, कह गए नृप किशोर मनु चिंता, देखन मिस मृग बिहग तरु, फिरे बहोरी बहोरी, निरखि निरखि रघुबीर छवि, बाढ़य प्रीति न थोरी। राम की बाह्य और आंतरिक चेष्टाओं का एक साथ वर्णन, करत बत कही अनुज सन, मन सिये रूप लुभान। मन तो सीता के रूप पर लुभाया है, बात लक्ष्मण से हो रही है। यह चित्र जितना ही स्वाभाविक और विशिष्ट है, अभिनय के लिए उतनी ही कुशलता की मांग करता है। लक्ष्मण से बात करने का अभिनय ऐसा हो कि मन का सीता के रूप पर लुब्ध होना प्रकट हो जाए, ऐसा ही निराला द्वारा चित्रित राम का यह दुर्लभ चित्र है। फूट स्मृति सीता ध्यान लीन राम के अधर। इस स्मृति को ऐसा होना पड़ेगा कि राम की सीता ध्यान लीनता व्यंजित हो जाए। वन मार्ग पर सीता और ग्राम बधुओं का जो संवाद है वह यूं ही नहीं मनोरम है, उस वर्णन की मनोहारिता का आधार उसकी नाटकीयता है। कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखि कहहु को आहि तुम्हारे। सुनि स्नेह मय मंजुल बानी, सकुच सिय मन महु मुस्कानी। सीता संकुचित हुई और मन में मुस्काई। तिनहि बिलोकि बिलोकति धरनी, दुह संकोच सकुचति बरबरनी। सीता एक बार ग्राम बधुओं को देखती हैं, फिर धरती की ओर आंखें झुकाकर नीचे देखने लगती हैं। वे बताएं कि न बताएं और बताएं तो कैसे। जहां स्नेह नहीं वहां संकोच नहीं, जहां कहने को बहुत कुछ नहीं वहां कहने में कठिनाई नहीं। सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखनु लघु देवर मोरे। बहुरी बदनु विधु अंचल ढाकी, पियतन चितई भौह कर बाकी। खंजन मंजु तिरछे नयननी, निज पति कहे उतिनहि सियक सयने सयननी। अंतिम दो पंक्तियों में वाणी से कोई काम नहीं लिया गया, चेष्टाओं द्वारा ही सब कुछ प्रकट किया गया है। जो कुछ प्रकट कर दिया गया है वह शब्दों द्वारा नहीं प्रकट किया जा सकता था। नाटकीयता की काव्य में ऐसी ही उपयोगिता और सार्थकता होती है। मोहिनी का वर्णन करने के चक्कर में पड़े हुए नारद की भरी सभा में चेष्टा देखिए। पुनि पुनि मुनि उक सही अकुलाही, पुनि पुनि मुनि अक सही अनुलाही अकुलाही। कवितावली में दुल्हिन सीता का संकोच और लज्जा की मनस्थिति में दूल्हा राम का रूप देखने की विशिष्ट चेष्टा का चित्र। राम को रूप निहारति जान की, कंगन के नग की परछाही। याते सबै सुधि भूल गई, कर टेक रही पल तारत नाही। अलंकार विशेषतः उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा प्रयुक्त शब्दों की ध्वनि योजना छंद आदि चित्रण के जरिए परिस्थिति की विशिष्टता को सामने लाकर पाठक श्रोताओं की मार्मिक अनुभूति जगाते हैं। सामने लाया जाने वाला चित्र नपातुला होना चाहिए, उसमें ऐसी चेष्टा या चेष्टाएं ही हो जो मार्मिकता को अपनी पूरी तीव्रता के साथ उभार सकें। भावना की तीव्रता जैसे अपने साथ संकोच लिए होती है, चित्र की विशिष्टता अपने साथ चेष्टाओं और वाणी का संकोच लिए होती है। तुलसी ने मार्मिक स्थलों पर अश्रुपात बहुत कम कराया है। उनके यहाँ आंसू या तो नेत्रों में छा जाते हैं या आँखों के कोने से लगे रहते हैं। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। कृपणता है इसीलिए अश्रुओं की अभिव्यक्ति प्रयत्नों का अभाव है, और इसलिए लोचनों के कोनों में लगे हुए लोचन जल की अभिव्यक्ति चेष्टा मूल्यवान है। वनवास ग्रहण करते हुए राम लक्ष्मण ने बरगद के दूध से अपने सिर पर मुनियों जैसा जटा जूट बनाया तो सुमंत्र की आंखों में जल छा गया। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत्र नयन जल छाए। भरत को कौशल्या ने हृदय से लगाया तो उनके स्तनों से दूध चू रहा था और उनकी आंखों में जल छा रहा था। अस कही मातु भरतु ही लाए, थन पय स्त्रवही नयन जल छाए। जानकी के विदा होते समय जनक की आंखों में जल छा गया। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। राम ने सीता को विविध प्रकार से समझाना चाहा कि तुम घर में ही रहो, मेरे साथ वन चलने में बहुत कष्ट होगा। राम की बातें सुनकर सीता के नैनों में जल भर आया। सुनि मृदु बचन मनोहर पियके, लोचन ललित भरे जल सियके। आंखों में आंसुओं का भर जाना, नैनों का अश्रु जल से छलछला आना केवल अभिव्यक्ति की तीव्रता का ही सूचक नहीं है, इस बात का भी सूचक है कि उन आंसुओं को रोका भी जा रहा है। आंसू आ रहे हैं और व्यक्ति उन्हें रोक रहा है, यह स्थिति उसकी भावना को और तीव्र और मार्मिक बना देती है। छलछलाती हुई आँखें जो चित्र प्रस्तुत करती है, जितना प्रकट कर जाती है, आंसू बहाती हुई आँखें नहीं। निराला की वह तोड़ती पत्थर की मजदूरनी भी रोती नहीं, न रोती हुई आँखों से कवि को देखती है। देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। इसी प्रकार कुछ और चित्र देखिए, जो चित्रण की विशेषताओं को बाह्य और आंतरिक चेष्टाओं के द्वारा मन पर ज्यों के त्यों अंकित कर जाते हैं। राम ने धनुष तोड़ दिया तो कपटी कुटिल राजा बहुत नाराज हुए। वे कहने लगे, हम सीता से जबरदस्ती विवाह कर लेंगे, दोनों राजकुमारों को बांध देंगे। राजाओं की ये बातें सुनकर लक्ष्मण के नेत्र अरुण हैं, उनकी भ्रुकुटी टेढ़ी है। वे राजाओं की ओर ऐसे देख रहे हैं मानो गजों को देखकर सिंह किशोर आतुर हो उठा हो। यह सारा वर्णन लक्ष्मण की क्रुद्ध दृष्टि का ही है। लक्ष्मण राम के डर के मारे कुछ बोल नहीं रहे हैं। अरुण नयन भ्रुकुटी कुटिल चितवन निरपन सकोन, रिपीट, अरुण नयन भ्रुकुटी। रिपीट अगेन, अरुण नयन भ्रिकुटी कुटिल चितवन निरिपन सकोप, मनहु मत्त गज गन निरखी सिंह किशोर रही चोप। परशुराम शंकर का धनुष टूट जाने से क्रुद्ध है, थोड़ा क्रुद्ध है, पूरी तरह क्रुद्ध नहीं। पूरी तरह क्रुद्ध तो तब होंगे जब वे धनुष तोड़ने वाले को पहचान ले। वे चंद्रमुख हैं, किंतु थोड़े से क्रोध के कारण उनका वर्ण अरुण हो गया है, कुटिल भावहीं हैं। थोड़े से क्रोध के कारण आंखें भी लाल हो गई हैं, सहज भाव से देखने पर भी क्रुद्ध मालूम पड़ते हैं। शीश जटा शशि बदन सुहावा, रिस बस कछुक अरुण हुई आवा। भ्रिकुटि कुटिल नयन रस रिस राते, सहज हूँ चित्तवत मनहु रिसाते। परशुराम के शरीर में क्रोध व्याप्त है। वे जानते हैं कि यह भीड़ स्वयंवर की है, फिर भी अनजान बनकर पूछते हैं, कहहु काह अति भीर। जानते हुए भी अजान बनकर पूछना दंडित करने की भूमिका है। अजान बनकर पूछना उनके क्रोध को चित्रित कर देता है। बहुरी बिलो की विदेह सन कहहु काह अति भीर, पूछत जान अजान जिमी व्यापे कोप शरीर। नारद ने जब विष्णु से कामदेव को जीत लेने की डींग हाकी तो वह गर्वोक्ति विष्णु को अच्छी नहीं लगी, लेकिन वे शिष्टता के नाते मृदुवचन बोले। किसी की बात मन ही मन बुरी लगे और ऊपर ऊपर से आपको शिष्टता के नाते मृदुवचन बोलना पड़े, तो ऐसे अवसर पर मृदुवचन कैसे होंगे यह भी देखने लायक है। मुनि, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान विराग नहीं होते। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में रत धीर हैं, आपको भला कहीं कामदेव पीड़ित कर सकता है? आपके स्मरण मात्र से मोह काम गर्व मद मिट जाते हैं। रुख बदन कर वचन मृदु बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमेरन ते मिटही मोह मार मर्द मान। मोहरुखा और वचन कोमल, अभिनय करने में कुशलता की आवश्यकता पड़ेगी। एक और उदाहरण, परशुराम को लक्ष्मण ने काफी कड़ी बात कह दी, बात कुछ अनुचित भी थी। परशुराम ने उत्तर दिया तो लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। उनके इस मुस्कुराने पर राम ने उन्हें आंखों से तरेरा। राम के आंखें तरेरने पर लक्ष्मण भीगी बिल्ली बन गए, चुपचाप मुनि विश्वामित्र के पास चले जाते भय। सुनी लक्ष्मणु बिहसे बहुरी नयन तरेरे राम, गुर समीप गवने सकुची परिहरी बानी बाम। कविता में उपमा आदि अलंकार इसी चित्रण और उसकी विशिष्टता को ठीक ठीक मन में जमा देने के लिए आते हैं। उपमा सादृश्य विधान की योजना करती है। सादृश्य विधान की कसौटी यह है कि वह आभ्यंतर प्रभाव साम्य पर आधारित हो। ऐतिह्य या कथानक तो सामान्य है, लोकविदित है, उसको कवि किस ढंग से प्रभावशाली बनाना चाहता है, उसको जैसी विशिष्टता प्रदान करना चाहता है, उसी के लिए सारा शिल्प और कौशल है। शिल्प कथानक को विशिष्टता विशिष्ट भंगिमाएं प्रदान करके रचना बनाता है। इसीलिए राम की कथा तो सुविदित है, फिर भी कवि उसे कहे बिना नहीं रह पाते। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहें बिनु रहा न कोई। वस्तुतः शिल्प कथ की विवशता या अनिवार्यता है। किसी को हम जैसा देखते और जानते हैं उसको वैसा ही प्रकट कर पाने की शब्द साधना है। यह तलवार की धार पर चलना है, जिस पर चलने का विवेक कथ्य से कवि हृदय का तादात्म्य प्रदान करता है। तुलसी की भक्ति का दूसरा नाम यही तादात्म्य है। कोई बात हमें जैसी लगती है उसको उसी रूप में प्रकट करने के लिए कवि उसे चित्रित करता है। चित्र को विशिष्ट या और भी ठीक ठीक स्वानुभूत जैसा दिखाने के लिए वह उसी की तरह कोई और वस्तु सामने ला देता है। यही सादृश्य विधान है। इसीलिए अलंकार को पंडित रामचंद्र शुक्ल ने वर्णन प्रकार माना है। कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से हूबहू नहीं मिलती, वह केवल उसकी तरह की हो सकती है। उपमान और उपमेय को जोड़ता है हृदय पर पड़ने वाले प्रभाव का साम्य। प्रस्तुत के समान जो अप्रस्तुत लाया जाता है वह प्रस्तुत के ही किसी गुण या गुण समूह को और अधिक दिखा सकने के लिए। कवि अपनी कल्पना के सहारे प्रस्तुत के समानांतर एक और सृष्टि की रचना करता है। यह सृष्टि वह शिल्प के सहारे रचता है। यह सृष्टि कवि कर्म है। अब देखना यह होता है कि कवि ने जो रचना की है वह उसके कथ्य को हृदयंगम करा सकती है या नहीं। उपमादि इस दृष्टि से कवि की रचना होते हैं। सादृश्य विधान सामान्य में कुछ अतिरिक्त गुणों का सन्निवेश करा के उसे विशिष्ट बना देते हैं, उसे औरों से अलग करके उसका स्वरूप निश्चित कर देता है। अतः कवि भावित चित्र आंक देता है। मुख कहने से किसी विशिष्ट मुख का चित्र नहीं उभरता, लेकिन कमल जैसा मुख कहा हो। कहा गया तो मुख में कमल की अरुणिमा, ताजगी, निर्मलता, प्रफुल्लता आ गई। वह मुख कमल के समान कहा जाकर सामान्य से विशिष्ट हो गया। जब कोई उपमान काफी रूढ़ हो जाता है तब कवि का मन वही उपमान प्रस्तुत करने को नहीं करता, क्योंकि कविगण उपमान का बहुत प्रयोग करके उसके विशिष्टीकरण की क्षमता को निशेष कर देते हैं। इसीलिए सब उपमा कवि रहे जुठारी, केह पट तरौ विदेह कुमारी। सारी उपमाओं को तो कवियों ने जूठा कर रखा है, मैं जानकी की उपमा किससे दूं? कहने का तात्पर्य यह है कि सादृश्य विधान का उपयोग रचनाकार भावित चित्र को, वह चित्र जिसे वह देख रहा है और जिसको सामने लाना चाहता है, पाठकों के हृदय में ठीक ठीक उतारने के लिए ही करता है। सादृश्य विधान की परीक्षा इस बात से होती है कि वह पाठकों के हृदय में कवि भावित चित्र उतार पाता है कि नहीं। कहने की आवश्यकता नहीं कि ऐसे सादृश्य विधान के लिए भी व्यापक और गहरे लोक परिचय और लोकानुभव की आवश्यकता है। तुलसी ने रूढ़ उपमानों का भी काफी प्रयोग किया है, जैसे कमल, चंद्रमा या हंस आदि का, लेकिन उनके यहाँ लोक जीवन के आधार पर प्रस्तुत किया गया ऐसा सादृश्य विधान भी मिलता है जैसा अन्यत्र दुर्लभ है। वे विशिष्ट मनः स्थिति को व्यक्त करने में इतने समर्थ हैं कि सहज ढंग से अनुभूत होकर लोग सामान्य बन जाते हैं। कोप भवन में स्थित केकई को मनाने के लिए पहुंचे हुए राजा दशरथ उसकी इच्छा को नहीं जान पाए थे। उसके हृदय में राम के प्रति जो परिवर्तन हो गया है उससे वे परिचित नहीं थे। उन्होंने अपनी समझ के अनुसार उसे प्रसन्न करने के लिए समाचार सुनाया, तुम्हारी इच्छा पूरी हो रही है, कल राम का राज्याभिषेक हो रहा है। यह सुनते ही केकई का हृदय दलक गया। बात छोटी सी थी लेकिन केकई के लिए पीड़ादायिनी थी। बाल तोड़ कोई बहुत बड़ा घाव नहीं होता, लेकिन जरा सा छू जाए तो भयंकर पीड़ा होती है। दलकी उठेउ सुन हृदय कठोरु, जन छुई गयउ पाक बरतोरु। पाक बरतोरु, पका हुआ बाल तोड़। केकई इस समाचार को सुनते ही फौरन दशरथ से अपनी पीड़ा प्रकट नहीं कर सकती थी। उसे दो वरदान मांगने और दशरथ पर वचन न पूरा करने का दोष लगाने के बाद ही क्रोध प्रकट करने का अवसर मिल सकता था, इसलिए उसने इस समाचार को हंसकर झेला। राम को राज्य मिलने की बात से उसे इतनी पीड़ा हुई जैसे कि पका हुआ बलतोड़ छू लिया हो, फिर भी उसे हंसना पड़ा, रोवा नहीं सकते थे। राम को राज्य मिल रहा है यह सुनकर वह दुख प्रकट करे तो दशरथ की निकाह में वह फौरन गिरेगी। उस पर विमाता सुलभ द्वेष का अपराध लगेगा। रोना या दुख प्रकट करना उसके मन के चोर को जाहिर कर देगा। वह दुखी है लेकिन दुख को प्रकट नहीं कर सकती। उसी तरह जिस तरह चोर की पत्नी अपने पति की करनी पर खुलकर रो भी नहीं सकती। रोए तो लोग रोने का कारण पूछेंगे या ताड़ लेंगे कि इसी के पति ने चोरी की है। ऐसी पीर बिहसी तेह गोई, चोर नार जिम प्रगति न रोई। रोने वाले पीड़ा किंतु रोना रोकर चोर। केकई के पक्ष में मन के चोर को छिपाने की व्यवस्था। तुलसी के यहाँ लोक जीवन में सीधे साधे उठाकर ऐसे सादृश्य विधान प्रस्तुत किए गए हैं जो स्थिति की विशिष्टता को भरपूर चित्रित कर देते हैं। आज की आलोचना उन्हें अत्यंत साहसपूर्ण कहेगी। ऐसी ठेठ उपमाएं कबीर के यहाँ मिले तो मिले। इन उपमाओं से यह पता चलता है कि उनके दृष्टि लोक में साधारण से साधारण और उपेक्षित से उपेक्षित वस्तुओं को भी कितनी गहराई से आंकती है। देहातों में वर्षा होने पर गोबर की कैसी छिछालेदार होती है। गोबर थाप लिया जाए तो उपला बन जाए, गड्ढों में भर दिया जाए तो खाद बन जाए, किंतु उस पर वर्षा हो जाए तो उसकी क्या स्थिति होगी। ऐसी ही स्थिति उन लोगों की होती है जो राम से विमुख हो जाते हैं। राम को युगीन मूल्यों का प्रतीक मानने वाले समझ लेंगे कि ऐसी ही स्थिति स्वार्थ की ही साधना में रत उन लोगों की हो जाती है जो जनता से अपने को पूर्णतः काट कर सड़ने गलने लगते हैं। खैर, तुलसी की यह उपमा देखिए। वर्षा को गोबर भयो को चहको कर प्रीति, तुलसी न अनुभव ही अब राम विमुख की रीति। चूंक साहित्य में शायद ही कहीं अन्यत्र दिखलाई पड़े। जल तो समान होता है किंतु जोंक अपने स्वभाव के अनुसार टेढ़ा ही चलता है। जल की सिधाई का उसकी टेढ़ी चाल पर कोई असर नहीं पड़ता। राम की सहज और सरल बातों का केकई की कुटिलता पर कोई असर नहीं पड़ा। सहज सरल रघुबर बचन कुमति कुटिल कर जान, चलई जोंक जल वक्र गति जद पि सलिल समान। जलज जोंक जिम गुन बिलगाए, बात फिट बैठती हो तो तुलसीदास और भी साहसपूर्ण सादृश्य विधान खड़ा कर सकते हैं। इतना साहसपूर्ण कि निषेधवादी और अकवितावादी तक तुलसी को पढ़कर पुलकित हो उठे। तुलसी देवल देव को लागे लाख करोरी, काक अभागे हगि मरयो महिमा भई की थोरी। देव मंदिर के बनवाने में लाखों करोड़ों लगे, अभागे कौवे उसमें हग हग के मर गए, लेकिन इससे देव मंदिर की महिमा नहीं कम हुई। तुलसी के सादृश्य विधान पर विचार करते समय एक और बात ध्यान देने की जरूरत है। तुलसी प्रसन्नता, प्रेम, पुलक के अवसरों पर प्रायः दरिद्रता, भूख, धन, पारस मणि, अंधापन, रोग से मुक्ति को सामने लाकर सुखद अनुभूति को व्यंजित करते हैं। उनके सादृश्य विधान कर्म की इस विशेषता पर थोड़ी बहुत चर्चा हमने अन्यत्र भी की है। इस प्रकार के सादृश्य विधान से हमें तुलसी के भाव बोध के स्वरूप का पता चलता है। पहले कहा गया है कि सादृश्य विधान किया जाता है स्थिति को विशिष्ट बनाकर इस ढंग से चित्रित करने के लिए कि वह लोक सामान्य बन जाए। लेकिन सवाल यह है कि रचनाकार सादृश्य विधान किन वस्तुओं और किन दृश्यों के आधार पर खड़ा करते हैं। जैसे कवि के सामने समानार्थक अनेक शब्द होते हैं और उनमें से वह कोई शब्द चुनता है, उसी तरह सादृश्य विधान के लिए उसके सामने पूरा संसार खुला रहता है। इस अनंत रूप में जगत और जीवन में किसी एक दृश्य या वस्तु को आधार बनाकर अपनी बात को पूरी तरह पाठक और श्रोता के हृदय में उतारने का प्रयत्न कवि करता है। मुख को कमल, जलज, चंद्रमा, दर्पण, सब कहा जा सकता है, लेकिन कवि अपने विवेक के आधार पर कोई एक शब्द चुनता है। यह चुनाव एक तरफ वर्ण को और अधिक विशिष्ट बनाता हुआ चित्रित करता है, दूसरी ओर कवि के भाव बोध को प्रकट कर देता है। तुलसी को कहना है कि प्रताप भानु से पराजित राजा कुसुम में जानकर अपने क्रोध को मन ही मन दबाकर वन में निवास करता है। वन में निवास करता है अशक्त और क्रुद्ध राजा। वह मन में अपने गुस्से को कैसे दबाए हुए है, इस गुस्से को दबाने का सादृश्य देखिए। रिस उर मार रंक जिमि राजा, बिपिन बसई तापस के साजा। राजा अपने को अशक्त मानकर अपने गुस्से को ऐसे दबाए है जैसे गरीब अपना गुस्सा दबा लेता है। मूढ़ और दुष्ट धनिक जब अपने नौकर या गरीब आदमी को अपमानित करते हैं तब उसे भी क्रोध आता है, लेकिन निर्धनता के कारण अपने को अशक्त समझकर वह बेचारा लहू के घूंट पीकर रह जाता है। गरीब के गुस्से को पीना, यह सादृश्य विधान पराजित राजा की स्थिति को ही नहीं चित्रित करता और मार्मिक बनाता है, तुलसी की पीड़ा और परदुख कातरता को भी प्रकट करता है। यह भी प्रकट करता है कि तुलसी निर्धनता को देखकर कितना पीड़ित होते थे। राजा का दुखी रहना और अपने को अशक्त मानकर वन में चले जाना उनका वर्ण था, लेकिन गरीब के गुस्से को पीने से जोड़कर तुलसी ने उसे विशिष्ट बनाया। लेकिन इस सादृश्य विधान को खड़ा करने की प्रक्रिया में उनका भाव बोध भी स्पष्ट हो गया। यह आकस्मिक और अकारण अथवा यादृच्छिक नहीं है। इस सादृश्य विधान की प्रक्रिया में उनकी अपनी छटपटाहट और पीड़ा भी शामिल है। यह सादृश्य विधान उनके अपने जीवन की रक्त और मजा से निर्मित हुआ है। तुलसी की ऐसी कुछ उत्प्रेक्षाएं यहाँ उद्धृत की जा रही हैं। सुख विदेह कर बर निन जाई, जन्म दरिद्र मन हूं निधि पाई। मरणशील जिम पाव पियूषा, सुर तरु लहे जन्म कर भूखा। प्रमुदित परम दरिद्र जनु पाई पदार्थ चारी। दरिद्रता के साथ साथ रोग से मुक्ति की प्रसन्नता। पावा परम तत्व जनु जोगी, अमृत लहेऊ जनु संतत रोगी। जन्म रंक जनु पारस पावा, अधि ही लोचन लाभ सुहावा। मूक बदन जनु सारद छाई, हर्षित हृदयम भानु पहि आए। मनहु अंध फिर लोचन पाए। आदि स्पष्ट है कि दरिद्रता और रोग से मुक्त होने पर जो अलौकिक प्रसन्नता होती है, तुलसी ने राम के दर्शन की प्रसन्नता से उसकी समानता कई स्थलों पर की है। उसका अनुभव गरीबी और रोग से पीड़ित व्यक्ति भलीभांति कर सकता है। यहाँ यह कह देना उचित जान पड़ता है कि राम द्वारा संस्थापित राम राज्य में इस पीड़ा से मुक्ति है। इसीलिए मानना चाहिए कि दैहिक दैविक भौतिक तापों से मुक्ति अर्थात लोक मंगल का तुलसी की कविता से रचनात्मक संबंध है। तुलसी के सादृश्य विधान को प्रकाशित करने वाली उक्तियां इस पुस्तक में अनेक स्थलों पर उद्धृत हैं। उन्हें या उन जैसी अन्य उक्तियों को यहाँ उद्धृत करने की आवश्यकता नहीं समझी जा रही है। हाँ, यह अवश्य जान लेने की जरूरत है कि उनमें रूपक का निर्वाह बड़ी दूर तक करते रहने का की अपूर्व क्षमता थी। यह क्षमता जायसी और सुर में भी मिलती है। रूपक निर्वाह की क्षमता का संबंध दृष्टि की व्यापकता से है। जो सादृश्य विधान प्रस्तुत किया गया है उसमें परस्पर कितना साम्य है, कितनी दृष्टियों से उसमें परस्पर साम्य है, यह देखने की क्षमता से रूपक का निर्वाह होता है। रूपक का निर्वाह दूर तक उसी सादृश्य विधान संभव है। रूपक का निर्वाह दूर तक उसी सादृश्य विधान में संभव है जहां ऐसी दो वस्तुएं आमने सामने लाई जाती हैं जिनमें कई दृष्टियों से असमानता खोजे जाने की संभावना है, समानता खोजे जाने की संभावना है। यह समानता भी आभ्यंतर प्रभाव साम्य पर आधारित होनी चाहिए। मानस के प्रारंभ में राम कथा को तुलसी ने नदी कहा तो कितनी दूर तक उस रूपक का निर्वाह करते गए। नदी के विषय में शायद ही कोई बात छूटी हो जिसकी समानता कथा में न दिखाई गई हो। नदी का उद्गम जल भंवर कमल पुर इन जल का स्वाद स्नानार्थी नदी के किनारे जुड़ने वाले मेले जलचर काय ठंडक से नदी में स्नान करने का डर मगरमच्छ घड़ियाल सागर से उनका मिलन सब कुछ को कथा पर खचित कर दिया गया। नदी और राम कथा मिलजुल कर एक पूरा समाज अपने में खींच लाते हैं। शब्द में केवल अर्थ ही नहीं होता, शब्द में स्वर और व्यंजनों की ध्वनियां भी होती हैं। भाषा में हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वे कुछ ध्वनियों से मिलकर बनी हैं। साहित्य की अन्य विधाओं से कविता की विशिष्टता यह है कि वह शब्दों का निर्माण करने वाले ध्वनियों और ध्वनियों की योजना से भी अर्थ व्यंजित करती है। साहित्य की अन्य विधाएं भी कभी कभार ऐसा कर लेती हैं, किंतु कविता शब्दों की ध्वनि योजना को अर्थ योजना में ऐसा घुला मिला देती है कि वे एक अभेद्य इकाई बन जाती है। शब्द का उच्चारण कविता में कोशगत अर्थ का बोध करा के ही नहीं अपना कार्य समाप्त कर देता, वह ध्वनि या झंकार के द्वारा उस अर्थ को विशिष्ट चित्रात्मकता प्रदान करने में सहायक भी होता है। शब्द का सामान्य अर्थ कविता में अपने ध्वनि के फैलाव प्रवाह घोषत्व महाप्राणत्व अघोषत्व अल्प प्राणत्व अपनी आवृत्तियों से कवि भावित चित्र को अधिकाधिक विशिष्ट बनाता है। गायन तबले और तार तारे से अनुवादित या समवादित अरे सॉरी गायन तबले और एक तारे से अनुधावित या समधावित होकर कंठ स्वर को जिस प्रकार श्रवण सुभग बनाता है उससे कहीं अधिक संश्लिष्टता के साथ शब्दों की ध्वनि योजना कविता की अर्थ संपदा को धारदार और नुकीली बनाती है। कविता के शब्दों की ध्वनि योजना शब्दों के साथ साथ चलती उठती गिरती प्रकट होती और विलीन होती है। ध्वनियां ही मिलकर शब्द बनाती हैं। शब्द और ध्वनि का अलग अलग अस्तित्व ही नहीं, इसलिए गायन और वाद्यों की सह स्थिति की समानता अत्यंत अपूर्ण है। लेकिन उसका यहाँ एक और प्रयोजन है। कविता में प्रयुक्त शब्द दो काम करते हैं, साधारण शब्दों की तरह वह अर्थ देते हैं और फिर अपने प्रवाह प्राण घोष आदि के आवर्तों से उस अर्थ को और अधिक विशिष्ट और चित्रात्मक बनाते हैं। वे अर्थवत्ता से अलग होकर फिर अर्थ में विलीन होते हैं। उसे अपनी भंगिमाओं से युक्त करके गायन और वाद्य यंत्रों की संगति की तुलना इसलिए दी गई। इस तुलना की अपूर्णता पर ध्यान न रखा गया तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि शब्दों की ध्वनियों में जो विविध भंगिमाएं आती हैं वह शब्दों के अर्थगत सानिध्य के ही कारण निरपेक्ष रूप से घोषत्व प्राणत्व आदि में कोई शक्ति कोई भंगिमा नहीं हो सकती। अब यहां अलग से यह बताने की कोई खास जरूरत नहीं रह जाती कि जिस प्रकार प्रबंध योजना, पात्रों की मनोस्थिति का स्वाभाविक चित्रण, मुहावरों का इस्तेमाल, सादृश्य विधान आदि कावि भावित चित्र को ज्यों का त्यों पाठकों श्रोताओं के हृदय में उतारने का उपक्रम करते हैं, इसी प्रकार शब्दों की ध्वनि योजना भी करती है। ये सारे तत्व काव्य कौशल या शिल्प में एक साथ मौजूद होते हैं। इनमें पूर्वापर का क्रम ढूंढ पाना दुष्कर है। यों यह बात साफ है कि शब्दों की ध्वनि योजना, ध्वनि के आवर्तों का प्रभाव पाठक या श्रोता पर सबसे पहले पड़ता है। पाठक भी कविता को अनजाने सुनकर ही समझता है। कविता में प्रयुक्त शब्दों की ध्वनियों द्वारा बनाया गया चित्र कविता के पढ़ने सुनने वाले के चित्त में सबसे पहले उभरता है। इसीलिए विज्ञ आलोचक मानते हैं कि कविता समझ में आने के पहले अस्पष्ट अस्पष्ट श्रवण ओवरहियर की जाती है। कविता में प्रयुक्त शब्दों की ध्वनि योजना प्रस्तुतः चित्रण की विशिष्टता का विकास पूर्ण कर देती है। शब्द अर्थ योजना द्वारा कवि भावित चित्र को विशिष्ट बनाते हैं। अपनी ध्वनि योजना से वे उस चित्र को और भी विशिष्ट बना देते हैं। नाटकीयता और चित्रात्मकता से उद्भूत विशिष्टता ध्वनिगत विशिष्टता से भी युक्त करके उसे पूर्ण बनाते चलती है। शब्दों की अर्थ और ध्वनि की योजनाएं एक दूसरे के समतुल्य होकर साहित्य की रचना करती हैं। वाक और अर्थ, शब्द और अर्थ दोनों की समतुल्यता या परस्पर स्पर्धी चारुत्व का यही आशय प्रतीत होता है। संक्षेप में शब्द सामान्यतः कोशगत अर्थ देते हैं। कवि जीवन और जगत की विभिन्न स्थितियों के संदर्भों में उन अर्थों से अपने भावित चित्र को पाठकों के सामने उभारने योग्य अर्थ खींच लेता है। कविता में प्रयुक्त शब्द अपनी ध्वनि योजना से भी अर्थ झंकृत करते हैं। ये सभी अर्थ एक दूसरे से अभिन्न होकर काव्यार्थ की रचना करते हैं। शब्दों की ध्वनि योजना द्वारा अर्थ की झंकार देने में तुलसीदास जैसी निपुणता हिंदी के किसी अन्य कवि के पास नहीं है। शायद संस्कृत का भी कोई कवि इस क्षेत्र में उनके सामने नहीं ठहर सकेगा। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने बिल्कुल ठीक लिखा है कि भाव के साथ ध्वनि की तरंगे उठाने गिराने में वह तुलसीदास अद्वितीय हैं। पृष्ठ 534 निराला की साहित्य साधना खंड 2। तुलसीदास जब कविता का आदर्श सुर सरी मानते हैं तो उनका आशय गंगा के प्रवाह से भी है। यह प्रवाह भाषा की गति को पहचानने वाले कवि की ही कविता में आता है। तुलसीदास संस्कृत फारसी देशी शब्दों को अवधि और ब्रजी की पंक्तियों में इस प्रकार नियोजित करते हैं कि पूरी पंक्ति ध्वनि की इकाई बन जाती है। ध्वनि प्रवाह में जो ऊंचाई नीचाई व्याप्ति या पतलापन आता है वह ध्वनि की नाटकीयता है, जिसे सहृदय और कुशल पाठक पढ़ता है तो भाव मूर्त हो उठता है। निराला के ही हेतु रानी रिसानी परसत पानी पति ही निवारई वाले छंद को ऐसे ही उतार चढ़ाव के साथ पढ़ते रहे होंगे। पश्चिमी आलोचक विशेषतः रिचर्ड्स का यह कहना उचित है कि कविता का उचित पाठ वही व्यक्ति कर सकता है जो कविता को समझता है, कविता मूलतः श्रव्य विद्या विधा है। इस श्रव्यता को उचित महत्व न देने के देने से कविता का प्रभाव भी क्षीण होता है। शब्दों की ध्वनि धारा भाव धारा के समानांतर कैसे चलती है? ध्वनि योजना बाह्य चेष्टाओं की सहचर कैसे होती है? इसके उदाहरण इस पुस्तक में पहले उद्धृत पंक्तियों में भी पाठकों को मिल जाएंगे। कुछ पंक्तियां यहाँ भी उद्धृत कर देना उचित है। भरत सहित अयोध्या के लोग राम से मिलने जा रहे हैं। वे राम के प्रेम की मदिरा पिए हुए भक्त हैं। सब स्नेह सुरा छके हैं, जाहि स्नेह सुरा सब छाके। स्नेह सुरा से छके हैं तो चल कैसे रहे हैं? शिथिल अंग पग मग डग डोलहीं, बिहबल बचन प्रेम बस बोलहीं। सांग रूपकत्व से कहीं अधिक भरपूर चित्रण पगमग डग डोलहीं से होता है। ध्वनि योजना स्नेह सुरा का प्रभाव दिखा देती है। सती का दक्ष यज्ञ में शंकर का भाग न देखकर आक्रोश में सभा के लोगों को फटकारना, सकल सभही हठी हटकी तब बोली बचन सक्रोध। हठ हटकी से आक्रोश की तीव्रता की चेष्टा का चित्रण, जनक की स्वयंवर सभा में लक्ष्मण का अमर्ष चित्रण। माखे लखन कुटिल भय भाव है, रदपट फरकत नयन रिसाव है। रदपट फरकत में कोई दीर्घ स्वर नहीं। होंठ के जल्दी जल्दी फड़कने की चेष्टा को चित्रित करने के लिए बीच में दीर्घ स्वर का व्यवधान नहीं। शंकर की सहजता व्यक्त करनी है तो शंभु सहज समर्थ भगवाना और उनके कठोर संयमी और अविचलित रूप का वर्णन करना है तो दुराराध्य पय अहहि महेशु। संयुक्त स्वर व्यंजनों का उच्चारण में कठिन विशेषण दुराराध्य, शंकर की कठिनता का समानांतर उच्चारण कठिन शब्द। तुलसी की पंक्तियां लोगों को बहुत याद हैं। वे उत्तरी भारत के गांवों, पूर्वों, खेतों, खलिहानों, चारगाहों, चौपालों में डूब जल धूल फसल की भांति बिखरी है। इसे कहना अनावश्यक है। अवश्य ही इसका कारण उन पंक्तियों की संदर्भवत्ता और मार्मिकता है, लेकिन इसमें तुलसी की पंक्तियों के ध्वनि प्रवाह का भी बहुत योगदान है। तुलसी की पंक्तियों में वह रपटन और फिसलन है कि उनका एक शब्द याद पड़ जाए तो पूरी पंक्ति अपने आप ही स्मृति में उदित हो जाती है। इसका कारण है पंक्तियों में प्रयुक्त शब्दों की ध्वनि मैत्री। गहरे मित्र ऐसे होते हैं कि एक को देख लीजिए तो दूसरे की याद अपने आप आ जाती है। एक शब्द की ध्वनि से पूरी पंक्ति की ध्वनियों का याद हो उठना ध्वनि मैत्री की पहचान है। वे शब्दों की ध्वनि मैत्री को स्थापित करने के लिए प्रधानतः दो कौशल अपनाते हैं। एक तो हर्स्वरांत लघु पद योजना के द्वारा, जिसके अंत में दीर्घ स्वर आता है। पंक्ति में हर्स्व स्वर वाले सरल व्यंजन एक दूसरे से गूंथे हुए होते हैं। इन सरल व्यंजनों की सरल ध्वनि धारा अप्रतिहत गति से चलती हुई रुकती है अर्धाली के अंतिम दीर्घ स्वर पर। समल सकल भव रुज परिवारु, जनमन मंज मुकुर मल हरनी, निरस बिसद गुण मय फल जासु, जल चर थल चर नभचर नाना, विधि बस सुजन कुसंगत परही, फनि मनि सम निज गुण अनुसरही, सहस बदन बरनई पर दोषा, खल अघ अगुन साधु गुण गाहा, गंगा सकुल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला, सरद मयंक बदन छवि सीवा, अधर अरुण रद सुंदर नासा, विधुकर निकर बिन निंदक हासा आदि।